देखते हैं हम कि आज के लेसन में अल्लाह ताला ने हमें क्या समझाया, क्या बताया।
इतनी प्यारी होप की आयत है ना, होप की इतनी जबरदस्त आयत है कि यानी अगर आज तक ऐसा कुछ कर दिया हुआ और नहीं पता था, आज पढ़ा है, आज समझ आई है, अब क्या करें, अब क्या करें, अब इसको कैसे मिटाएं। तो फरमा दिया वमन यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु, जिसने कोई बुरा काम किया, माजी में कोई गलती ऐसी हो गई, सूअन कोई भी बुराई, सू होती है ऐसी, असल में सू कहते हैं लाश को, और उससे इंसान को, अब देखें कोई बदबूदार लाश पड़ी हुई है किसी जानवर की, तो कितनी कराहत आती है। तो सू असल में ऐसा अमल है जिससे इंसान को कराहत आए, मिसाल है झूठ है, तो ये सू है ना, इंसान को हर एक को कराहत आती है। और यज़लिम नफ्सहु, यहाँ वो अपनी जान पे कोई जुल्म कर बैठे, यानी बात चीजें ऐसी हैं जो इंसान को अट्रैक्ट करती हैं और इंसान उनमें फंस जाता है, जैसे कि बेहयाई के काम है, जैसे सूद है, जैसे किसी को साथ फ्रॉड करके उसको धोखा देना, उसको उससे पैसा हथिया लेना, अपनी जान पे जुल्म किया। तो कोई भी हुकुकुल्ला में हो या हुकुकुल्लिबाद में हो, सुम्मा यस्तग़फिरुल्लाह, फिर वो अल्लाह से बख्शिश मांगे तो क्या होगा, अल्लाह माफ कर देगा क्या, क्या अल्लाह मेरी भी माफी हो सकती है क्या? उसका जवाब है कि जब तुम बख्शिश मांगोगे ना, या जिदिल्लाह गफूर रहीम, तो अल्लाह को कैसा पाओगे, गफूर रहीम, आगे कोई अपना दरवाजा खोले हुए है और उसने बता दिया है कि वो गफूर रहीम है, तुम उसको ऐसा ही पाओगे, उसकी तरफ से दुत्कारना नहीं सुनोगे, अब आ गए हो, अब तुम्हें याद आ गया, नहीं तुम उसको कैसा पाओगे, गफूर रहीम। तो हर वो इंसान जो अल्लाह की तरफ झुकता है, अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी और अपनी वुसत रहमत लेके उसको ढांप लेता है, उसके गुनाह चाहे सवीरा हैं या कबीरा हैं बख्श देता है, चाहे वो गुनाह आसमान और जमीन और पहाड़ों से भी बड़े हों, तो अल्लाह ताला तब भी फरमाया क्या है उसके लिए, ये नहीं कहा कि छोटे गुनाह करोगे तो फिर, फरमाया अल्लाह गफूर रहीम, जो भी कर लिया तुमने। बनी इसराइल में जब कोई गुनाह करता था तो उसके दरवाजे पे लिखा हुआ आ जाता था कि ये इसने गुनाह किया, इसका कफारा लिखा हुआ आ जाता था कि ये तुम्हें कफारा अदा करना है, तो उसकी कितनी रुसवाई होती थी, सबको पता चलता था, ये देखो जरा ये करने वाला। अल्लाह ने यहाँ पे क्या फरमाया, हमारे गुनाहों को हमारे दरवाजों पे नहीं लिख दिया, वरना हम तो रुसवा हो जाते, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। अंदाजा करें कि मेरे और आपके कोई गुनाह दरवाजों पे हमारे लिखे होते, आज इसने इतने झूठ बोल दिए हैं, आप तुम ये करो, आज इसने नमाज ऐसी बुरी पढ़ी है, ये करो, अब इसका कफारा ये है, आज इसने गइबत की है, आज इसका कफारा ये है, तो हमारा क्या हाल होता। अल्लाह ताला कितना मेहरबान है। और देखें ये आयत जो है ना, इतनी इतनी होप की, इतनी उम्मीद की आयत है, इतनी जबरदस्त आयत है कि इस आयत के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ जो बात की। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद सहाबी है, रसूल है, बहुत बड़े सहाबी, जलील उल कदर, वो फरमाते हैं सूरह निसा में 5 आयतें ऐसी हैं कि अगर सारी दुनिया मुझे मिल जाए तब भी मुझे उतनी खुशी नहीं होगी जितनी इन आयतों से खुशी हुई है। और उनमें से 4 आप पहले पढ़ चुके हैं, मैंने सोचा जब 5वीं आएगी ना इंशाल्लाह मैं आपको तब ये वाक्या सुनाऊंगी ताकि सारी कवर हो जाए। और मैंने आपको इसलिए शुरू में नहीं सुनाया था जब ये सूरा शुरू हुई थी, क्योंकि अब आपको ज्यादा ये बात समझ आएगी। अल्लाह अकबर, वो 5 आयतें कौन सी हैं जिनकी उनको इतनी खुशी है, इतनी खुशी कि पूरी दुनिया भी मिल जाती तो कहते मुझे नहीं इतनी खुशी होती जितनी इन आयतों से। आपका दिल चाह रहा है सुनने का, कौन सी बोल सकती है। अब आपने पढ़ लिया वो, जितना आपने पढ़ा उसी में से हर कोई गेस करे कौन सी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ
इतना टाइम नहीं है कि मैं आपकी गेस्ट सुनू। तो पहली तो है इन्ना लाला यदनी मुमित काला जर्रा वाली आयत, हमने आयत 40 पढ़ी थी कि अल्लाह ताला किसी पे जर्रे बराबर भी जुल्म नहीं करता, और जिसकी जिस किसी की जो नेकी होती है उसका सवाब बढ़ा चढ़ा के देता है, और अपनी तरफ से जो एक्स्ट्रा है बतौर इनाम अजरे अजीम भी देता है। दूसरी एक और आयत है, इन तजतनिबू कबा इरामा तनहाउना अन्हु, अगर तुम कबीरा गुनाहों से बच जाओगे ना तो हम तुम्हारे सगीरा गुनाह वैसे ही माफ कर देंगे और तुम्हें इज्जत वाली जगह जन्नत में ले जाएंगे। तीसरी आयत कौन सी है? तीसरी आयत है आयत नंबर 48, वो वाली कौन सी थी जो पहले मैंने बताई 31 नंबर पे थी आलिबन। तो ये तीसरी आयत है आयत नंबर 48 कौन सी? इन अल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा। वो कहते हैं कि देखो कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया अल्लाह ताला अपने साथ शिर्क करने को नहीं बख्शेगा, बाकी जिस गुनाहगार को चाहे बख्श दे। तो वाकई फिर इसमें होप लगता है ना कि कहीं बख्शिश की उम्मीद है, बस मैं शिर्क ना करूं। चौथी आयत ये है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अन्फुसहुम जाऊका, ये लोग ए नबी अगर कोई इनसे गुनाह हो जाता है ये तेरे पास आते हैं और खुद भी अल्लाह से अपने गुनाह की बख्शिश तलब करते हैं और रसूल भी इनके लिए इस्तग़फार मांगता है, तो बेशक वो अल्लाह ताला को माफ करने वाला मेहरबान पाएंगे। आयत नंबर 64। और फिर पांचवी आयत ये, और बाद ने कहा कि नहीं चार ही आयतें हैं, ये आयत 64 नहीं है, ये जो हमने अभी पढ़ी है ये वाली आयत है जो चौथी आयत है, और अब्दुल्ला बिन मसूद को ये इतनी प्यारी थी, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो हैं उनसे इस सूरत में 8 आयतें हैं जो वो कहते हैं इस उम्मत के लिए हर चीज से ज्यादा बेहतर है, जिस पर सूरज निकलता है, जिस पर क्या होता है सूरज निकलता है और गुरूब होता है, क्या फिर रह गया उसके अंदर, कोई चीज नहीं रह गई, इसका मतलब हर एक चीज से ज्यादा बेहतर है इस उम्मत के लिए 8 आयतें, और 5 तो वो यही बताते हैं जो यहाँ पे दी गई हैं, और बाकी वो कहते हैं कि 5वें पारे में हमने पढ़ी है वो आयत नंबर 46, 47 और 48 नंबर आयतें, और उनमें भी क्या है कि युरीदुल्लाह लियुबय्यिना लकुम, अल्लाह ताला चाहता है अपना एक काम तुम पर साफ साफ बयान कर दे, अल्लाह चाहता है तुम्हें अच्छे लोगों की रास्ता दिखाए जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, अल्लाह चाहता है कि तुम पे मेहरबानी करे। कितनी प्यारी बात है, तो ये तो इतनी प्यारी आयतें हैं। फिर दूसरी कौन सी, यानी ये छठी हो गई, सातवीं कौन सी? वल्लाहु युरीदु अन यतुबा अलैकुम, यानी अल्लाह चाहता है कि तुम पर अपनी रहमत नाजिल करे और तुम्हारी तौबा को कबूल कर ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह चाहता है, चाहना तो हमें चाहिए ना कि हम अपनी तौबा करें आए हम बच जाए, अल्लाह चाहता है कि तुम्हारी तौबा कबूल कर ले, उसने तो अपनी चाहत पहले ही बता दी, वो तो चाहता ही है कि तुम्हें माफ करे। और आठवीं आयत युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ को, वह खुलकल इंसान दईफा, अल्लाह ताला फरमाता है इंसान चूंकि जयीफ पैदा किया, अल्लाह ताला उसके ऊपर तखफीफ करना चाहता है, हल्का करना चाहता है उसके ऊपर बोझ। कहते हैं ये इतनी बड़ी आयतें हैं, इतनी जबरदस्त आयतें हैं, सुबहान अल्लाह। तो इसमें अल्लाह ने दरवाजा खोल दिया जिससे भी कोई गलती हो जाती है ना फिर वो अल्लाह से माफी मांग ले, बस शर्त ये माफी सच्चे दिल से मांगे, तौबा सच्चे दिल से करे, अल्लाह नहीं अब नहीं करूंगा। कभी इंसान जज्बात में आके कोई गलती कर बैठता है, कभी इंसान ना किसी ऐसी मजलिस में बैठा होता है ना उसमें कोई बात चली और आपने भी बात करते करते कोई ऐसी बात मुंह से निकल गई, कभी कभी ऐसे होता है कि किसी के प्रेशर में आके कोई काम ऐसा कर दिया, कभी ऐसे होता है कि जहालत पता ही नहीं था तो कर दिया, कभी ऐसा होता है पता भी था वो उस वक्त बनी गया दिमाग को हो गया था, हम कहते हैं ना दिमाग ही मेरा खराब हो गया था, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने उस वक्त ये क्यों कर दिया, ये क्यों बोल दिया। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, किसी किस्म का भी गुनाह हुआ हो। उसके बाद जब अल्लाह ताला फरमाते फरमा दे कि यजीदिल्लाह गफूर रहीम, वो अल्लाह को कैसा पाएगा, ये आगे कुछ और भी आ सकता था, वो अल्लाह को पाएगा सख्त अजाब देने वाला, जुन्तकाम इंतकाम लेने वाला, सरीउल हिसाब तेजी से उसका हिसाब लेने वाला, सरीउल अकाब
جلدی کرنے والا سزا دینے میں.
نہیں اس سب کو چھوڑ کے اللہ نا اپنے اتنے پیارے نام لے کر آیا, اس کو غفور رحیم پاؤ گے, یعنی وہ تو چاہتا ہے کہ معاف کر دے. تم اس کو پاؤ گے معاف کرنے والا اپنے لیے, تم اس کو پاؤ گے رحم کرنے والا اپنے لیے. جیسے ماں کہتی ہے کہ بیٹا جب بھی آ جاؤ گے تم اپنی ماں کو انتظار میں ہی پاؤ گے اپنے لیے, تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے جب بھی آؤ گے کسی طرح کا بھی گناہ کر کے آؤ گے اللہ کو غفور رحیم ہی پاؤ گے. کوئی ایسا شفیق مہربان ہو سکتا ہے جو خود کہہ رہا ہے کہ کر ہو گیا نا تم سے, وہ ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں آ جاؤ تم پھر بھی مجھے ایسا ہی پاؤ گے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے, اے ابن آدم تو جب بھی مجھ سے دعا کرے اور مجھ سے گناہ معاف کرنے کی امید رکھے تو تیرے جتنے بھی گناہ ہوں گے میں بخش دوں گا اور مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو پہنچ جائے پھر بھی تو مجھ سے بخشش مانگے میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے پرواہ نہیں ہے کہ کتنے گناہ لے کے آیا, اتنے زیادہ لے آیا. تجھے پہلے نہ یاد آیا تھا, یہ نہیں اللہ فرماتا ہے مجھے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے تو کتنے لیا. اے ابن آدم اگر تو زمین بھر کے بھی گناہ لے کر دے پھر تو مجھے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا تو میں اتنی ہی مقدار میں تجھے بخشش سے نواز دوں گا. سبحان اللہ, اللہ تیرے قربان جائے, تو کتنا رحیم ہے اور تو کتنا غفور ہے, تمہارے بھی گناہوں کو معاف فرما دے اللہ, تمہارے اوپر میرے مہربان ہو جا اللہ, ہمیں بھی تیری مغفرت کی اور تیری طرف سے رحمت کی ضرورت ہے اللہ, محتاج ہے تیری رحمت اور بخشش کے, تو ہمیں بھی معاف کر دے. کوئی گناہ ہم نے بھی نہیں چھوڑا, کوئی گناہ ہم نے بھی نہیں چھوڑا. ایک عورت نے حضرت عبداللہ بن مفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ عورت نے بدکاری کی پھر جب بچہ پیدا ہوا تو اس کو مار ڈالا, تو آپ نے فرمایا اس کی سزا جہنم ہے. وہ روتی بھی واپس چلی تو پھر بلایا اس کو اور یہی آیت تلاوت فرمائی, اس نے اپنے آنسو پونچھ ڈالے اور واپس لوٹ گئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا پھر اس اللہ سے بھاگو گے دور, کیا پھر اس اللہ سے دور جاؤ گے جو اتنا مہربان ہے, وہ تو اپنی رحمت کی چادر پھیلائے ہوئے ہے. سوچیں وہ کہہ رہا ہے میں غفور الرحیم, تم مجھے پاؤ گے غفور الرحیم ہی پاؤ گے. تم پلٹ کے تو دیکھو, آ کے تو دیکھو. لوگ کیوں کہتے ہیں کہ میں پتہ نہیں توبہ کروں, پتہ نہیں قبول بھی ہوگی کہ نہیں, اچھا میری توبہ ہو سکتی ہے, کیوں کہتے ہو ایسے؟ کیوں تم سمجھے نہیں ہو اپنے رب کو ابھی تک؟ تم جانتے نہیں ہو کہ وہ کتنا مہربان ہے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. پہلے توبہ کی ٹوٹ گئی تھی, اب کیا دوبارہ کریں؟ پھر ٹوٹ گئی تھی, دوسری دفعہ بھی ٹوٹ گئی تھی, اب کیا فائدہ کرنے کا؟ نہیں, تم پھر بھی آؤ اللہ کی طرف پلٹو. جس نے معاف کرنا ہے وہ خود فرما رہا ہے کہ تم مجھے پاؤ گے ایسا غفور رحیم, پھر بھی انسان کوتاہی کرے, پھر بھی توبہ کرنے میں سستی کرے, ابھی نہیں کروں گی اس وقت کروں گی. کو کس وقت کرو گے؟ آج ہی کرو, ابھی کرو, کوئی پتہ نہیں اگلی سانس کا. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, کوئی پتہ نہیں ہوتا انسان کا نا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں, کہ وہ ایک آدمی تھا حضرت عمر کے خلافت میں, تو اس آدمی بہت امیر تھا, بہت امیر, اور وہ ابھی ابھی اسلام لایا تھا, تو کہیں حج یا عمرے پہ گیا, کعبے میں طواف کر رہا تھا, تو ایک صحابی تھے ان کا پیر اس کے پیر پہ پڑ گیا, اس نے اتنی زور سے تمانچہ مارا. آج اب صحابی تھے یا مجھے یہ یاد نہیں پڑ رہا کہ کون تھے, کوئی ایک شخص تھا, کوئی ایک صحابی کے ایک مسلمان تھا باہر, کیا وہ لے کے معاملہ حضرت عمر کی عدالت میں آئے. حضرت عمر نے کہا کہ تم بھی اس کو تھپڑ مارو,
उसने कहा, नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता, अगर इसने मुझे थप्पड़ मारा तो देखना फिर मैं क्या करता। उन्होंने कहा, तुम अभी काम डाउन हो जाओ, तुम कल मेरे पास आना। वो अमीर आदमी जो था ना वो भाग गया। अगले दिन पता चला वो तो भाग ही गया, और फिर पता चला वो तो मुर्तद ही हो गया, उसने तो दीन को ही छोड़ दिया। तो हजरत उमर ने उसके पास लोगों को भेजा कि देखो मैं एज खलीफा नहीं, मैं एज इंसान तुम्हें मुसलमान होने के नाते कहता हूं, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं कि तुम वापस लौट आओ इस्लाम में। उसने कहा, मैं इस शर्त पे आऊंगा कि हजरत उमर मेरे पास चल के आए, तो चल के आएंगे मेरे पास तो फिर मैं मानूंगा। उन्होंने कहा, कोई मसला नहीं, वो मुझे इतनी दूर भी जाने का कह देगा, मैं चला जाऊंगा। वो चल पड़े उसके पास, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वो कुफर में ही मर गया। सोचे, इंसान जब तौबा नहीं करता उसको नहीं पता होता कि मेरा अगला लम्हा क्या होगा, मेरे साथ क्या होने वाला, क्या मेरी जिंदगी की मोहलत भी है या नहीं है। और जो आजकल अचानक अमवात इतनी हो रही है, बैठे बैठे किसी को कुछ हो जाता है, बैठे बैठे मौत का परवाना आ जाता है, फिर भी इंसान अगर तौबा में गफलत करे, सुस्ती करे, अल्लाह को मनाने में, अल्लाह की तरफ पलटने में, कहाँ भाग के जाओगे अल्लाह से, वापस तो अल्लाह ही की तरफ जाना है, तुम जितना मर्जी भाग लो। इंसान उस दिन कहेगा ना, ऐन अल मफर, ऐन अल मफर, कहाँ है कोई भागने की जगह। वो भाग नहीं सकोगे, वो भाग नहीं सकते, तुम किधर जाओगे, अल्लाह को छोड़ के किधर जाओगे। ये जो दुनिया भाग रही है ना, किधर, कब तक भागोगे, कब तक। आफियत इसी में है कि पलट आओ, अल्लाह की तरफ आ जाओ, उसके पास पहुंचने से पहले इसको मना लो। और मनाना कितना ही आसान है, कोई नाके नहीं रगड़नी, कोई कुछ भी नहीं करना। देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कितना आसान नुस्खा बता दिया। फरमाया, जिस मुसलमान से कोई गुनाह हो जाए ना, फिर वो वुजू करे, 2 रकत नमाज अदा करे और अल्लाह से तौबा इस्तगफार करे, तो अल्लाह उसके उस गुनाह को बख्श देता है। ये इतना तो हल्का काम कोई भी नहीं करने का आपको कहता, किसी से भी आप माफी मांगने जाओ वो सुनाता है ना, वो सुनाता है कि बस। इंसानों से कभी माफी मांगी है, अल्लाह ताला माफ करे। इंसान अव्वल तो माफ करने पे तैयार ही नहीं होते, पहले तो आप उनके पास जाते हैं ना तो वो इतनी आपको जली कटी सुनाते हैं कि दिल और किरची किरची हो जाता है, दिल दुख जाता है, ताने मारेंगे, फिर पता नहीं क्या क्या बातें कहेंगे, फिर भी मानेंगे नहीं, फिर भी मूड बनाएंगे, फिर भी कुछ, इतना नाके रगड़नी पड़ती है उनको मनाने के लिए, इंसानों को। नहीं, अल्लाह ताला के लिए कितना, वो जितना बड़ा है ना, इतना बड़ा है, फिर उसको मनाना उतना ही आसान है, हालांकि कितना मुश्किल होना चाहिए कि हाँ, वो तो रब्बे कायनात है, उसकी तो शान में हमें एक जरा सी भी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, हमसे इतनी ज्यादा हो गई, लेकिन उसको मनाना कितना आसान है। ये उसकी मोहब्बत है, ये उसकी शफकत है, ये उसकी मेहरबानी है, ये उसका लुत्फ व करम है, ये उसका गफूर और रहीम होना है, ये है उसकी रहमत। ये को कितना रहम करता है अपने बंदों के ऊपर, कहता है, मैं तुम मुझे पता है तुम लोग कमजोर हो, मैं तुम्हें तुम्हारी तकफीफ चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी ये आयतें। अब देखें, आज मैंने आपको ये बातें बताई कि ये वाली 8 आयतें कितनी खूबसूरत है और कितनी अजीम आयतें हैं कि जिनके बारे में इन सहाबियों ने ये फरमाया। लेकिन इससे पहले आपको ये बात पता थी भला, आप लोगों ने कोई कभी इस तरह से गौर करके देखा था कि आई ये वाली वाकई आयत इतनी प्यारी है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी बड़ी रिलीफ रखी है, ये कितनी अजीम आयत है, ये आपको पहले पता था, कभी शायद सोचा भी ना हो। तो हम उस तरह डेप्थ में नहीं ना जाते, हम उस तरह सोचते नहीं है। वो तो देखिए कैसे इस चीज को करते थे कि ये इतनी मुझे प्यारी है, ये आयत उतर गई मुझे तो खजाने मिल गए, ये तो दुनिया जहान से ज्यादा मुझे प्यारी है। कभी हमें भी कोई आयतें ऐसी प्यारी होती है, या हम कहेंगे पूरी दुनिया एक तरफ, मेरे जेवर मेरे सेट सब एक तरफ, मेरे जो मर्जी एक तरफ, मुझे तो ये आयत मिल गई, बस मुझे तो सारा जहान मिल गया। अल्लाह ताला हमें माफ करे ना हमारे ऐसे शौक और ना हमारे ऐसे अल्लाह ताला से तौबा करने के या तखफीफ के कोई ऐसे नहीं हुआ। पढ़ लिया ठीक है, बंद कर दिया, चलो जी अगला हफ्ता आ गया फिर खोल लिया, उनको उनके जौक भी अलग थे, वो कुरान की आयतों को भी फिर देखो कैसे देखते थे और कैसे समझते थे, कैसे इनमें डूबते थे, कैसे इनको अपनी निजात का जरिया समझते थे कि मुझे तो सब कुछ ही मिल गया। जैसे हमें कोई चीज मिल जाती ना, हम कहते हैं हाय मुझे ये चीज मिल गई ना, मुझे सब कुछ मिल गया, बस अब तो मुझे कुछ और चाहिए नहीं। कभी कुरान के लिए भी हमने ऐसे सोचा कि ये आयत मिल गई, बस सब कुछ, मुझे तो जहान मिल गया। हम ये बातें इसलिए बताई जाती हैं कि हम भी अपनी इस तरह के जौक बनाएं, ऐसे अगर नहीं आज तक भी थे ना, तो ऐसे शौक बनाएं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। व मैं यक्सिब इस्मन फ इन्नमा यक्सिबहु अला नफ्सी। और जो कोई कमाएगा ना कोई गुना, तो अपने ऊपर ही डालता है, किसी का नहीं कोई बुरा करता। अल्लाह ताला को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी इतनी बादशाही है। वो कहता है कि मेरी तस्बीह कर रही है जो कुछ आसमान में और जो कुछ जमीन में, वो उसको क्या परवाह। करते जाओ तुम, ना नमाज पढ़ो, ना कुरान पढ़ो, ना सच बोलो, ना ईमानदारी करो, जो मर्जी करते रहो, उसको फर्क नहीं पड़ता। हाँ तुम्हें जरूर फर्क पड़ेगा। ऐसे नहीं समझो कि वो कहता है कि मैं गफूर रहीम हूँ, तुम मेरी तरफ पलट आओ, बख्शिश मांग लो, तौबा सच्ची कर लो, तुम मुझे गफूर रहीम पाओगे, तो पता नहीं उसको तुम्हारी जरूरत है ना, उसको नहीं कोई जरूरत। उसका काम तुम्हारे बगैर चलता है, तुम्हारा काम उसके बगैर नहीं चल सकता। तुम्हारी तो एक सांस भी उसके बगैर नहीं आ सकती। हमारे तो काम जहां बनते होते हैं ना, हम तो वहां पे जाके नाके रगड़ते हैं, जिससे हमें काम होते हैं ना, हम उनके दरवाजे तोड़ देते हैं, मिठाइयां उनके घर लेके जा रहे हैं, फ्रूट लेके जा रहे हैं, उनके बच्चों को प्यार कर रहे हैं, उनको ये कर रहे हैं। हमें पता है यहाँ से हमारा काम जो बनना है ये बहुत बड़े ओहदे पे है, या ये बड़े मालदार हैं, या इनके पास बड़ी अथॉरिटी है, बड़ी पावर है, यहाँ से मेरा काम बनना है। तो उनके बच्चे भी बड़े प्यारे लगते हैं, उनकी गाड़ी भी साफ करते हैं, उनको झुक झुक के सलाम भी हम करते हैं, फिर उनकी तारीफें भी बड़ी हम करते हैं, है ना। हमें पता होता है ना हमारे काम जहां से बनने हैं, फिर हमने क्या क्या करना है। वो जिधर से सारे ही तुम्हारे काम बनने हैं, जिसके हाथ में सभी चीजें हैं तुम्हारी, तुम्हें नहीं समझ आती उसके साथ कैसे करना है, उसके साथ कैसे चलना है, वो पता ही नहीं चलता। हमें समझ ही नहीं है उसको। तुम्हें इंसानों का पता है कि इनसे काम लेने के लिए हमने क्या करना है, तुम्हें ये नहीं पता। वो जिसके पास सारी तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा एक एक रिश्ता, तुम्हारी एक एक सांस, तुम्हारा एक एक रुआ जिसके कब्जे में, तुम्हें नहीं पता चलता उसको कैसे मनाना है, नहीं समझ आती तुम्हें। फिर भी तुम बेपरवाह उसकी तारीफ करने से, उसको याद करने से, उसके गुण गाने से, उसके आगे झुकने से, उसके आगे नाके रगड़ने से, उसकी तारीफें करने से, तो फिर भी बेपरवाह हो गया, जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा सब कुछ उसके हाथ में, तुम्हारी ये गर्दन उसकी मुट्ठी में है, उसके कब्जे में है ना। जो दुआ भी है कि अल्लाह मेरी पेशानी के बाल तेरे कब्जे में है। अल्लाह अकबर, बातें बहुत हो जाएंगी, आगे चलते हैं। वकान अल्लाह अलीमन हकीमा। अल्लाह ताला इल्म वाला, हिकमत वाला, उसको पता है कौन क्या कर रहा है। नहीं कि तुम्हारे कोई गुनाह छुपे में उससे, उसको पता है। तुम समझते हो उसने इग्नोर कर दिया, नहीं उसकी हिकमत है असल में, उसको इल्म है। फिर छोड़ा क्यों हुआ है? हम सोचते हैं उसको पता ही नहीं शायद चला, नहीं पता है उसको। क्यों नहीं फिर मुझे सजा दी अभी तक, मुझे पकड़ा क्यों नहीं? उसकी हिकमत है। क्या हिकमत है? कि तुम्हें मोहलत दे। क्यों मोहलत दे? कि तुम तौबा कर लो। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए ऐसे रब के। वह मैं यकसिब खतीअतन औ इस्मन सुम्मा यरमी बिही बरियन फकद इहतमल बुहतानम व इस्म मुबीना। जिसने कोई खता कमा ली, खता मतलब क्या होता है, खता क्या होती है, ये जो यानी इंटेंशनली नहीं कुछ काम किया, बस अनइंटेंशनली हो गया, पर्पज नहीं था, मकसद से मतलब इरादे से नहीं किया। बस मैंने आपको कहा ना, कभी जज्बात में आके इंसान कुछ कर बैठता है, कभी किसी मजलिस का असर ऐसा हो जाता है, वो बस ऐसा हो गया, एक खता हो गई। और इस मन या पर्पसफुली किया, तो पूरे इरादे से किया कि नहीं ये मैंने करना है। सुम फिर उसने क्या किया, बजाय इसके कि खुद गलती की थी, क्या होना चाहिए, सुम्मा यस्तगफिरुल्लाह, फिर तो होना चाहिए अल्लाह से बख्शिश मांगता। लेकिन उसने क्या किया, उसने यरमी भी बरियन उसको थोप दिया एक गुना बेगुनाह के ऊपर। नहीं हमने कहा किया, ये तो इसने किया, इसने कहा था, मैंने तो नहीं किया। अब गुनाह किया, वह गलती हुई है, पर वो अपना जुर्म किसी और के ऊपर डाल दिया। फकद इहतमला बोहतानम व इस्म मुबीना, तो उसने तो बहुत बड़ा बोहतान उठा लिया अपने ऊपर। इहतमला का आ गया उठाया, बोझ उठाने को कहते हैं ना हमल, ये बोझ ही है जो बोहतान इंसान दूसरे पे लगा देता है। बोहतान क्या होता है, एक बात नहीं थी दूसरे में, उसको उसके ऊपर इल्जाम दे दिया। मिसाल के तौर पे अब आप जैसे हमने खाइनीन की बात की कि खाइनीन की हिमायत में ना खड़े हो, तो क्या होता है उसमें बहुत दफा बोहतान लगाए जाते हैं। नहीं वो तो ऐसी थी, वो तो ऐसी थी नहीं, उसने ऐसे कहा था, उसने ऐसा कहा ही नहीं था। लेकिन अब हमने जो साबित करना है कि हमारे वाला जो पार्टी थी ना वो सच्ची थी, तो वो दूसरे वाले झूठे थे, तो उनके ऊपर सारी बातें ऐसी लगा दी जो उन्होंने बेचारों ने कही भी नहीं हुई। ये बोहतान बांधना हुआ ना। अब यहां पे भी क्या था, इस वाक्य में भी क्या, ये अभी सारी उसके कॉन्टेक्स्ट में भी चल रही है ये आयतें, कि किसके ऊपर बोहतान डाला, वो उस यहूदी के ऊपर डाल दी, वो तो बेकसूर था। तो जो बंदा ऐसा करता है ना कि किसी और के ऊपर बोहतान लगा दे, उसने बड़ा बोहतान लगाया, उसने अपने सर पे बड़ा बोझ डाल दिया, बहुत खुल्लम खुल्ला उसने गुनाह अपने ऊपर ले लिया। बोहतान लगाना किसी के ऊपर भी, चाहे जुर्म खुद किया है तब तो बोहतान लगाया डबल ही एक हो गया ना, कि खुद किया खुद था। आपने किसी को कोई, किसी ने मसलन आपको कोई बात कही, आपने कहा फलाने नहीं कही है, वो फौरन मुकर गई, मैंने तो कही नहीं, ये तो इसने ही मुझे कही थी, मैंने तो नहीं कही ये बात। अब आप हैं और वो है, तीसरा अल्लाह है बस, किसी को भी नहीं पता, क्योंकि आप और वो ही बैठी हुई थी, आपने कही भी नहीं, उसने आपका नाम लगा दिया, कही उसने खुद थी। तो ऐसे चीजें होती रहती हैं। और फरमाया कि ये बड़ा बोहतान लगाया उसने, अपने ऊपर बोझ उठा लिया, बोझ तो कयामत के दिन पता चलेंगे ना, ये गुनाहों के बोझ कितने वजनी होते हैं, ये तो दुनिया में नहीं ना पता चलते। जैसे हम वजन अपना बढ़ाते रहते हैं, हमें पता चलता है हमारा वेट गेन हो रहा है, वो स्केल पे जिस दिन खड़े होते हैं, हाय मेरा तो इतना वेट गेन हो गया, लेकिन उठाने में तो हमें कोई नहीं पता चल रहा था। इसी तरह गुनाह उठाने में अभी नहीं नजर आ रहे, अभी तो इनका बोझ कोई पता ही नहीं चल रहा। ये तो वहां पे जब गठरियां उठानी पड़ेंगी, जब हशर के मैदान में उठ के खड़े होंगे ना, हाय तो फिर वो वजनी बोझ होगा जो गुनाहगार ने उठाया होगा। इंसान अपने गुनाहों को लेके चलेगा फिर, और वो वजनी होंगे, और कोई नहीं हेल्प करने के लिए आएगा कि आए मैं आपका बोझ उठा लेती। अल्लाह अकबर। तो ये आसान होता है किसी के ऊपर बोहतान लगा देना। हमने तो उसको ऐसे देखा था, किसी ने मुझे कहा कि उसकी सास ने उसके ऊपर बोहतान लगा दिया, और वो भी ऐसा, आपको पता है कि कबीरा गुनाहों में से है भोली भाली मासूम औरत के ऊपर बोहतान लगाना, कबीरा सात मुबिखात में से है ये। तो लोग कितने आराम से बोहतान बांध देते हैं, फलाना ही का फलां के साथ चक्कर है, ये क्या किया आपने, बोहतान। इसी तरह और कई बातों के बोहतान लगा देते हैं, शौहर के ऊपर बोहतान लगा देते हैं, वो क्या बोहतान नहीं होता, वो भी बोहतान है कि जो कोई बेकसूर है उसके ऊपर इल्जाम लगा देना कि तुम तो ऐसे थे और तुम्हारा तो फलां के साथ कुछ गलत ताल्लुक है, ये भी बोहतान है। तो ये खुले गुनाहों में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतनी डरा देने वाली बात है कि बोहतान बाज को कयामत के दिन अल्लाह ताला जहन्नुम में उस मकाम पे रखेगा जहां जहन्नुमियों की गंदगी होगी, और उसको कहा जाएगा कि तो उसको कहा जाएगा कि तुमको उस वक्त निकाला जाएगा
जब तुम अपने बोहतान को साबित कर दो तब अल्लाह ताला तुम्हें वहां से निकालेगा। तो वो साबित कैसे करेगा भला, वो तो था ही नहीं, तो साबित कहां से करेगा। तो ये जुबानों को जब खोलते हैं ना किसी पे बोहतान लगाने के लिए तो बहुत केयरफुल रहे। अच्छा बात ये होती है, किसी ने कहा मुझे तो लगता है कि ऐसा है, मुझे तो मिसाल के तौर पे मुझे लगता है कि उसने चोरी की, आप आगे जाके बोहतान बांध देते उसी ने चोरी की है, उसने कहा था मुझे लगता है, आपने उसको फैक्ट बना दिया तो बोहतान लगा दिया। वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैका, ए नबी अगर अल्लाह का फजल आपके ऊपर ना होता, वह रहमत हो और उसकी रहमत ना होती आपके ऊपर, यानी अल्लाह का फजल और रहमत नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ना होता, लहम्मत तौइफतुम मिनहुम अन युदल्लूक, तो एक ग्रोह ने तो इरादा कर ही लिया था कि वो आपको बहका देंगे। अब उस वाक्य के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर अल्लाह ताला आपकी हिफाजत ना करता और ये आयतें ना उतारता और आपको इन जो सच्ची बात थी हक बात थी उससे मुत्तले ना करता, तो इन्होंने तो प्रोग्राम पूरा बना लिया हुआ था आपको डी ट्रैक करने का, आपको मिसलीड करने का कि आपको बहका दें, क्योंकि तो उन्होंने तो कह दिया होता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में आपके ये बात आ गई थी कि हाँ ये बेकसूर है और यहूदी कसूरवार है। और बाज लोग होते हैं इतने चर्ब जुबान होते हैं कि वो वाकई अपने आप को सच्चा कर लेते हैं और इंसान उनकी बातों में भी आ जाता है। अल्लाह अकबर। तो इसका मतलब नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर भी उनको भी अल्लाह की रहमत की मोहताजी है, वो भी अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं, अल्लाह के फजल के मोहताज हैं। तो उनको मोहताजी है तो बाकी सबको कितनी मोहताजी होगी। तो इन्होंने तो मिस गाइड कर ही दिया था, वमा युदिल्लूना इल्ला अनफुसहुम, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो बहकाते नहीं है मगर अपने नफ्सों को, वमा यदुरूनका मिन शय, और वो आपका कोई नुकसान नहीं कर सकते, वो आपको कुछ नुकसान नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि आपकी हिफाजत कौन कर रहा है, अल्लाह ताला खुद कर रहा है। तो जब जिसकी हिफाजत अल्लाह कर रहा है उसको कौन बहका सकता है, अल्लाह ने जिम्मा लिया हुआ है आपकी हिफाजत करने का। तो इंसान जो किसी के लिए बुरा चाहता है वो अपने लिए ही बुरा कर रहा होता है। وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, और अल्लाह ने नाजिल की आपके ऊपर किताब, किताब मतलब क्या, ये कुरान, और क्या नाजिल की, हिकमत। मैंने आपको बताया हिकमत पहले भी बताया था कि हदीस को कहते हैं, यानी जो अल्लाह ताला ने जो आपको दानाई सिखाई, अल्लाह ने जो आपको बसीरत अता फरमाई, अल्लाह ताला ने जो आपको कुरान की तशरीह अता फरमाई, मामलात का फहम करना सिखाया, वह अल्लामका, और आपको सिखाया, मालम तकुन तालम, जो आप नहीं जानते थे, वह क्या ना फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, आपके ऊपर अल्लाह का बड़ा ही ये फजल है। क्या फजल है ये कि अल्लाह ताला ने आपको ये किताब दी, आपको हिकमत दी, और आपको वो सिखाया जो आपको नहीं पता था पहले। सोचे नबुवत से पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कलाम नहीं किया था, आप ठीक है सादिक और अमीन थे, मगर जैसे कुरान की बातें ऐसी वाली बातें नहीं की थी आपने, अल्लाह ने सिखाई, अल्लाह ताला आपका मुअल्लिम है, अल्लाह ने आपको सिखाया, आप किसी मदरसे से नहीं पढ़े थे। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है वमा कुंत तदरी मल किताबु वलल ईमानु, ए नबी आपको तो पता ही नहीं था किताब क्या होती है तो ईमान क्या होता है, ये तो अल्लाह ताला की आपके ऊपर खास रहमत है, अल्लाह ने आपको सिखाया है। अलम यजिद का दौलन फहदा, अल्लाह ने आपको दौलन, गुमराह नहीं होता हमेशा, वो भी होता है जो हिदायत की तलाश में होता है, अल्लाह ने आपको ऐसा पाया था तो अल्लाह ने आपको हिदायत दे दी, हिदायत का रास्ता दिखा दिया। तो ये सब चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से नहीं आती थी, अल्लाह ने अता फरमाई। तो इसको अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये अल्लाह का फजल है, کیا چیز کو فرمایا اللہ کا فضل ہے؟ مال و دولت دے کے نہیں فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، بے شک وہ بھی اللہ کا فضل ہے، لیکن جو جس کو اللہ تعالیٰ نے فضل عظیم فرمایا وہ کیا ہے؟ یہ کتاب اور حکمت اور یعنی علم، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا کہ اس کو اپنا انعام فرمایا کہ یہ میرا انعام ہے آپ کے اوپر، یہ اللہ کا فضل ہے آپ کے اوپر۔
تو آپ بتائیں، آپ کو بھی تو علم مل رہا ہے اس کتاب کا اور حدیث کا اور ان چیزوں کا جن کو آپ نہیں جانتی تھی پہلے۔ آپ نے بھی کبھی یہ سوچا کہ میرے اوپر اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے؟ کیا ہوتی میں اس وقت، کدھر چل پھر رہی ہوتی، کسی مال میں ہوتی یا کسی پارٹی پہ بیٹھی ہوتی یا گھر کے صفائیاں اور کھانے پکا رہی ہوتی یا یہ کر رہی ہوتی، اور مجھے کیا آتا تھا، اور اللہ نے مجھے یہ علم دیا۔ تو یہ اللہ کا فضل عظیم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ عطا فرما دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور فضل قرار دیا۔ اچھا، یہ وہ علم ہے جو ایسے ٹرانسفر نہیں ہو سکتا کہ آپ لے لیں اپنے ماں باپ سے، کوئی پیسے نہیں ہے، یہ کوئی وراثت نہیں ہے، یہ انسان کو اس کے لیے اللہ سے مانگنا بھی پڑتا ہے اور محنت بھی کرنی پڑتی ہے، اللہ سے طلب کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا، اے نبی آپ کہیں ربی زدنی علما، آپ بھی زدنی مالا نہیں کہا، اے اللہ میرے مال میں مجھے زیادہ کر دے، اور کسی چیزوں میرے علم میں۔ تو آپ بھی اپنے لیے یہ دعا کیا کیجئے اور محنت کریں، یہ تو بہت بڑی ایک چیز ہے جس کو اللہ عطا کر دے، اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے، اس کا بڑا احسان ہوتا ہے، اور ہم اس کو کچھ بھی نہ سمجھیں، بس پڑھ لیا اس کے بعد کوئی محنت نہیں ہے، کوئی ٹائم نہیں لگانا۔ یاد ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ علم ایسے ہی آ جانا ہے بغیر محنت کیے، کچھ نہیں کرنا پڑے گا، تو وہ اور چیزیں تو شاید ان کو مل جائیں، علم نہیں ملے گا، یہ بغیر محنت کے نہیں آتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، وقت لگانا پڑتا ہے، کبھی رات کو نیند کم کرنی پڑے گی، کبھی گپ شپ کا ٹائم کم کرنا پڑے گا، کبھی فون کم کرنے پڑیں گے، کبھی یہ واٹس ایپ اور یہ ٹی وی کم کرنا پڑے گا، لیکن کہیں سے وقت نکالیں گے اس کے لیے تو آئے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کتنی قیمتی چیز عطا فرمائی ہے کہ اس کو اپنا فضل قرار دیا ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور کتاب یعنی قرآن پاک، حکمت، دانائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ لیکن صحابہ کہتے تھے نا کہ اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم نمازی نہ ہوتے، اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم صدقہ خیرات کرنے والے نہ ہوتے۔ اسی وجہ سے دیکھیں سورہ آراف میں ہے نا کہ جنت والے جنت میں جائیں گے نا تو وہ پتہ کیا کہیں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ ہدایت دی، ہمیں کہاں آنی تھی، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ نہ ہمیں ہدایت دیتا ہمیں کہاں ملنی تھی ہدایت، ہمارے پاس کہاں آنی تھی، ہمیں کیا پتا تھا ہدایت کا راستہ کون سا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، ہم تو لوسٹ تھے بالکل۔ تو وہ جنت میں بھی جا کے اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ کے بڑے کرم نوازی ہوتی ہے کہ کسی کو ہدایت کا راستہ دکھا دے اس کتاب کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو اپنے دین کا فہم عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اچھا، آگے یہاں تک یہ بات جو واقعہ تھا نا اس کا مکمل ہو گیا، میں نے آپ کو بتایا 105 سے لے کے 113 تک اسی واقعے کے کانٹیکس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، اللہ کی رحمت آپ کے اوپر کہ یہ آپ کو اپنی باتوں میں نہیں لگا سکے، اور اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا، یہ آپ کو نہیں بہکا سکتے، یہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اوپر اتنی بڑی نعمتیں کر کے یہ فضل کیا ہے اپنا۔